ओम शांति। सीरीज चल रही है 16 कलाएं। तो पहली कला हुई थी भाषण करने की कला, जिसमें 8 किस्तें हुई। दूसरी चल रही है सोचने की कला, उसका आज दूसरा एपिसोड है। पहले हुआ था सोचने की कला पर के ऊपर प्रकाश डाला था प्रकाश भाई ने, और आज दूसरा है रचनात्मक सोच के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। हमारी सोच कैसे रचनात्मक हो, हमारी सोच का दायरा कैसे बढ़े, मन बुद्धि चलता क्यों नहीं है, तो कैसे अपनी सोच को बढ़ाना है उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार एक बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी में जो भी परंपराएं थी, पुरातन परंपराएं, उनके अनुसार वार्षिक मीटिंग होती थी और जो भी नियम कायदे होते थे उसके ऊपर उन पर चर्चा होती थी। जो स्टूडेंट्स के अनुशासन या उनको पढ़ाने का तरीका, उनको कुछ सिखाने का तरीका, हर साल उन पर चर्चा होती थी और बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। तो कुछ साल तक वो चलती रही, कई सालों तक चलती रही, लेकिन उसमें स्टूडेंट की वृद्धि नहीं होती थी, परंतु परिणाम बहुत अच्छा आता था उसका। दूसरे यूनिवर्सिटी से भी लगभग अच्छा आता था, लेकिन जब वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से बाहर जाते थे तो उनके जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, जबकि जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उनके स्टूडेंट को सफलता बहुत अच्छी मिलती थी और उनका परिणाम उतना बेहतर भी नहीं होता था, जबकि जो बेहतर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, वो भी फिर पीछे रह जाते थे। तो ऐसे मीटिंग चल रही थी तो जो मीटिंग में एक प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट नया नया आया था, तो प्रेसिडेंट ने सारा यूनिवर्सिटी का अवलोकन किया, उनके सारे तौर तरीके देखे, व्यवस्थाएं देखी, सारा जायजा लिया, फिर देखा कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी पुरानी है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, परिणाम अच्छा है, लेकिन कुछ एक चीजें थी जो यूनिवर्सिटी की संख्या आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसने जो बैठक में निर्णय लिए वो कुछ अलग थे, उसने पुरानी जो परंपराएं थी उनको बदल दिया। तो जैसे पुरानी परंपराओं को बदलने लगा तो जो दूसरी कमेटी थी, फैकल्टी मेंबर थे, तो उन्होंने उस पर आपत्ति जताई कि नहीं, ये तो जो भी परंपराएं चल रही हैं पुरानी हैं उसी अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जो नया जो प्रेसिडेंट था वो नए आधुनिक तौर तरीके का था, बहुत एक्सपीरियंस भी था उसको, तो कुल मिलाकर उसने नए तौर तरीके लागू कर दिए कि नहीं, इसी के अनुसार आगे की पढ़ाई होगी। अभी तो जैसे नए प्रेसिडेंट के मान्यता के अनुसार पढ़ाई लागू की गई, तौर तरीके लागू किए गए, तो उस यूनिवर्सिटी के परिणाम और ही बेहतर आने लगे, क्योंकि उसमें आधुनिकता का रंग तो था लेकिन एक चीज नहीं थी, जो पढ़ाई किताबों में थी केवल वही पढ़ाई जाती थी, लेकिन क्रिएटिव नहीं था। जैसे स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे तो जो नए संसार में आने के बाद, क्योंकि जो सिलेबस के अतिरिक्त जो भी कार्य क्षेत्र पर स्टूडेंट उतरते थे तो जो सिलेबस में नहीं होता था उसके अतिरिक्त होता था, तो जो क्रिएटिविटी उसने वहां शुरू की उसके आधार पर उनका जो सोच का दायरा बढ़ गया, उनकी बुद्धि ब्रॉड होगी, इंटेलेक्ट ब्रॉड होगी और नए नए उनको विचार आने लगे। तो जैसे वो कर्म क्षेत्र जाने के तो सफलता भी उनकी बढ़ने लगी और देखते देखते उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 400 से 6000 तक हो गए। तो माना सोच जो है नए तरीके से होनी चाहिए, नवीनता। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है दीदी के बारे में, दीदी को हमेशा क्या रहता था, नवीनता। एडवांस पार्टी में भी दीदी पहुंची तो वहां भी दीदी ने यही जिक्र किया बाबा के साथ। बाबा ने जो संदेश दिया है, बाबा ने जो मुरली में सुनाया नीचे आके, कि दीदी पूछ रही थी कि क्या नवीनता कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ होते भी दीदी उमंग उत्साह में तो मुरली को भी नए नए तौर तरीकों से क्रिएटिविटी कराते हुए आगे बढ़ाने में सबको सहयोग देती रही। तो कहने का अर्थ है, जब तक हमारे जीवन में रचनात्मक सोच नहीं है तब तक हमारे पुरुषार्थ में नवीनता नहीं आती है, उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। तो इस रचनात्मक सोच के कुछ घटक अर्थात कुछ कंपोनेंट्स, कुछ बिंदु हैं, जो अगर हम जीवन में उनको लाते हैं तो हमारी सोच को एक नई दिशा मिलती है, सोच हमारी बेहतर होती जाती है, नया दृष्टिकोण मिलता है। तो जीवन में रचनात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है, विशेषकर इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि जो हम सबकी मंजिल है वो बहुत हाईएस्ट है, दुनिया की सभी मंजिलों से अलग है, टोटल डिफरेंट है, हमारी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, कैसे हमारी रचनात्मक सोच का दायरा बढ़े, उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें अपनी सोच को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और विशाल बनाना है, ताकि इस ब्राह्मण जीवन में हम पुरुषार्थ की गति को तेज कर सकें। संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। सबसे पहले हमको प्रतिज्ञा करनी होगी स्वयं के प्रति कि जो भी हम सोच रहे हैं, चाहे वो ज्ञान का कोई भी एक छोटा सा बिंदु है, उसके ऊपर विशेष फोकस करके उसके ऊपर अच्छी तरह से सोचना, कोई भी एक सेंटेंस लेकर। तो संकल्प को जब हम दृढ़ करेंगे, क्योंकि जैसे हम संकल्प करते हैं तो जीवन में बाधाएं तो आती हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उनको हम नजरअंदाज करते हुए हमें अपने संकल्प पर अगर हम दृढ़ रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो रचनात्मक सोच के प्रति हमारे कदम आगे बढ़ने लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं ही दृढ़ संकल्प करना होगा, क्योंकि संकल्प एक बीज है, और उस बीज को बोने के बाद केवल संकल्प करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दृढ़ संकल्प को करने के बाद उस पर विशेष और ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बीज तो हमने धरनी में बो दिया, एक भी हम जो संकल्प करते हैं उस संकल्प में बहुत बड़ा एक संसार समाया हुआ है। जैसे हम संकल्प करते हैं, अगर हमने उसको वहीं छोड़ दिया तो वो संकल्प मुरझा जाता है, वो फलदायक नहीं होता है। अगर हम संकल्प पर फोकस करते हैं तो वो संकल्प बीज के बाद थोड़ा उगेगा, दो पत्ते निकलेंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, पौधा होगा, पेड़ बड़ा पेड़ बन जाएगा। अगर हम उस संकल्प पर ध्यान देते रहते हैं और बड़ा होने के बाद वही पेड़ फल देगा, शाखाएं होंगी, पत्ते होंगे, फल फूल लकड़ी होगी, कितनी सारी उसकी जो हम फायदे ले सकते हैं अगर हमने उस संकल्प रूपी बीज पर अटेंशन दिया। तो अगर खाली संकल्प कर छोड़ दिया तो वो पर्याप्त फल नहीं देगा, वो कमजोर रहेगा। इसलिए संकल्प जो हम करते हैं उस संकल्प के ऊपर विशेष रूप से अटेंशन देकर उसकी पालना करना, क्योंकि संकल्पों का संसार आत्मा के अंदर जो है उसको यथार्थ तरीके से उसकी पालना करना, उसको सुचारू रूप से आगे दिशा प्रदान करना। तो अपने मन के ऊपर, मन के अंदर हम जो भी डेली संकल्प डालते हैं, हमें स्वयं को स्वयं ही चेक करना होगा कौन कौन से संकल्पों का भोजन हमने आज किया है, शुद्ध संकल्पों का भोजन। जब तक शुद्ध संकल्प हमारे मन बुद्धि में नहीं है तब तक हमारे जो सोच का दायरा बढ़ेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्प करना होगा और संकल्प के ऊपर भी विशेष अटेंशन देने की जरूरत है, उस संकल्प की पालना करनी होगी, चाहे वो फिर हम पॉजिटिव संकल्प कर गए या नेगेटिव, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन से संकल्प की पालना करनी है। तो विशेष रूप से संकल्पों के ऊपर विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। तो सबसे पहला घटक हो गया कंपोनेंट्स संकल्प, वो उसमें भी दृढ़ता। उसके बाद नॉलेज का दायरा हमको बढ़ाना है, वास्ट नॉलेज, अर्थात जो भी हमारे पास ज्ञान अभी तक हमारी बुद्धि में ठहरा है वो ही केवल पर्याप्त नहीं है, और इसके दायरे को बढ़ाना होगा। बार बार हमें अपने अंदर झांकना होगा कि अभी तक कितना ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ये हमारी कमाई का साधन है। जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा उतना हमारी बुद्धि ब्रॉड होती जाएगी, उतना हमारा चिंतन प्रखर होगा, उसमें निखार आएगा, उतना चिंतन को नई दिशा मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना भी हम ज्ञान कलेक्ट कर सके, इसलिए बाबा ने आज के मुरली में भी कहा, अमृत वेले के ऊपर विशेष बताया, अगर किसी ने प्रश्न किया है कि अगर अमृत वेले सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है, मनन चिंतन की कमी, और वो भी केवल थोड़े समय के लिए नहीं बताया, सारे दिन के लिए बताया। सारे दिन में हम कितना ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, कितना ज्ञान को हम अपने सामने रखते हैं, अलग अलग तरीके से उसको अपना बनाने की हम कोशिश करते हैं। हम स्वयं इस बात के अनुभवी होंगे कि जिस दिन हम अच्छा चिंतन करते हैं या ज्ञान के ऊपर विशेष फोकस देते हैं या मुरली को बार बार देखते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं सारा दिन, तो उस दिन हम सब इस बात के अनुभवी होंगे कि योग की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। चाहे वो इवनिंग या मॉर्निंग अमृत वेले का या अनुमा शाम का योग है, वो क्वालिटी भी बेहतर होगी। इसलिए मनन चिंतन नॉलेज को हमको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना है, ज्ञान रत्नों से खेलना है ताकि वो ज्ञान अपना हो जाए। अर्थात जो बाबा के मुख से, बाबा कहते हैं जो बाप से मुख से निकले वही तुम बच्चों के मुख से निकले, समानता होती जाए दिन प्रतिदिन। तो इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन देने की जरूरत है कि नॉलेज को हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है ताकि हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी एक इसमें सहायक बिंदु बन सके। तो दूसरी बात होगी नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, इसको हमको बढ़ाना है। तीसरी बात आत्मनिर्भर, स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहना है। दूसरों की बैसाखी के सहारे हम कहां तक चलते रहेंगे? जब तक हम स्वयं की बुद्धि को तेज नहीं करेंगे, स्वयं के बुद्धि रूपी खजाने के अंदर, बुद्धि रूपी झोली के अंदर खजाना नहीं भरेंगे, तब तक दूसरों के घर में जाकर कब कब कितना समय तक खाते रहेंगे, कौन हमें खिलाता रहेगा इतना। इसलिए स्वयं को भोजन तैयार करने की जरूरत है। मेहमानबाजी में अगर हम जाते हैं कहीं भी तो कितना दिन तक मेहमानबाजी करेगा कोई, दो दिन, चार दिन, महीना, दो महीने बाद में, तो वो भी उसका भी, जब तक कहते ना मेहमान जब जाता है तो पहले पहले रोटी कौन सी मिलती है, घी वाली रोटी मिलती है, दो चार दिन तो घी वाली मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे घी कम होता जाएगा, और जिस दिन समझो घी नहीं लगा उस दिन वो सोच समझ मेहमान को समझ लेना चाहिए कि अभी हमको ये कह रहा कि यहां से चले जाओ। इसलिए दूसरे के ज्ञान चिंतन पर भी हम कहां तक रहेंगे, दूसरों के बैसाखी के सहारे, दूसरों के कंधे के सहारे अपने जीवन को कहां तक चलाते रहेंगे। इसलिए स्वयं ही चिंतन की कला को बढ़ाते जाना है, मनन को बढ़ाते जाना, आत्मनिर्भर, स्वावलंबन अपने ऊपर। संसार में भी देखा जाता है अधिकतर वही मनुष्य संसार में सफल होते हैं जो अपने बलबूते पर, अपने पांव पर खड़ा होते हैं। हमने देखा है बहुत सारे घरों में जो माँ बाप हैं, भले उनके अच्छे अच्छे बिजनेस थे लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपने बिजनेस से नहीं डाला, उन्होंने कहीं दूसरी नौकरी दिलाई उसको, फिर बाद में नौकरी छुड़ाई, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि ये केवल माता पिता का जमा किया हुआ ही खाता रहे, अपने पांव पर स्टैंड हो। क्योंकि अगर माता पिता के जमा किए हुए खाने की आदत पड़ गई तो एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा। इसलिए स्वयं के बलबूते पर, स्वयं के हम चिंतन पर जितना अपने को शक्तिशाली बनाते जाएंगे तो भी हमारी सकारात्मक सोच के प्रति उस दिशा में हमारे कदम बढ़ते जाएंगे। तो तीसरी बात होगी आत्मनिर्भरता। फिर चौथी बात है जो भी हम एक्टिविटी हम इतने दिनों से करते हैं, हम देखा इधर तो बुद्धि कैसे चलती है, जो यहां होमवर्क दिया, कल ही दिया गया था कि अर्जेंट कौन सी चीज है, महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, महत्वपूर्ण कौन सी नहीं और जो नहीं करनी है, तो हमारी उस एक्टिविटी के प्रति हमारी सोच अपने आप चलने लगती है। तो जो भी अनेक प्रकार के हमको इस तरह के मौके मिलते हैं, इस तरह के अवसर मिलते हैं, उनमें हमको सहभागिता लेना अति आवश्यक है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमको केवल मौका मिले, स्वयं ही अवसर का निर्माण करना है, स्वयं की मौके का निर्माण करना है। अगर दूसरों के अवसर पर हम बैठे रहे कि कब हमारा वो टर्न आएगा, कब हमारी बारी आएगी, तो जो अमूल्य समय संगम युग का वो भी निकलता जाएगा। इसलिए स्वयं ही अवसरों का निर्माण करना है ना। एक बार सिकंदर ने लड़ाई की, चढ़ाई की, जीत लिया एक शहर। फिर उसको उसका साथी पूछता है, अभी आगे का आपका आगे क्या करेंगे, आगे का अगर आगे आपको जाना हो तो आगे क्या करेंगे, अवसर कब मिल अवसर आएगा अगर आपको तो ऐसा अगर अवसर मौका मिलता है तो आगे आप क्या करेंगे। कहता अब सिकंदर कहता है अवसर मिलेगा ये नहीं सोचो, अवसर हमको खुद ही निर्माण करना है। अगर हम समय के भरोसे बैठे रहे तो हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी असफलता हमारे कदमों में आ जाएगी। इसलिए स्वयं ही अवसर का निर्माण करके आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि सेल्फ प्रोग्रेस के लिए एक्टिविटी का कोई मौका मिले, स्वयं ही नए नए अवसर निर्माण करते हुए स्वयं की रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाना है। इसलिए एक्टिविटी। और दूसरा हम देखते हैं बच्चों में स्कूल में भी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद होता है, डिबेट होती है, भाषण होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग, कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो सके। तो हम भी गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट में हम अपना विकास करने के लिए, अपनी सोच को विकसित करने के लिए इस तरह के जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये स्वयं को ही हमें बनाने हैं, ताकि हमारी जो सोच है वो सीमित दायरा न रहे, उसका उबरती जाए दिन प्रतिदिन। हमारी नवीनता, चाहे वो ज्ञान में, चाहे वो योग में, या चाहे वो सेवा में, चाहे वो धारणाओं में, हर सब्जेक्ट में हमारी नवीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। इसलिए प्रतियोगिताएं भी जितनी होती हैं उनके ऊपर भी हमको विशेष रूप से ध्यान देकर रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है, और रचनात्मक सोच कहां होती है, योग में, क्योंकि इसके लिए मौन की या एकांत की बहुत जरूरत है। जब तक हम अपने मन बुद्धि से दूसरी मन बुद्धि को दूसरी बातों से नहीं समेट लेते तब तक हमारी सोचने इतनी चलती नहीं है। भले हम योग में बैठे हैं लेकिन मन के टुकड़े टुकड़े इधर हुए पड़े हैं, इधर उधर लगे पड़े हैं। अगर हमारी सोच उनके प्रति चल रही है तो भी हम कुछ नवीनता नहीं कर पाएंगे जीवन में। इसलिए जो भी हम योग, हमारा योग कैसा है, योग तो रचनात्मक ही है ना, उसमें करते क्या बैठ गए। अगर हमें सुस्ती आती है या हमारे योग में कोई रस नहीं आ रहा है तो वास्तव में कमी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की है, क्योंकि कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। योग की जो पुराने तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चल रहे हैं। जब तक नवीनता नहीं आ रही है तो योग में जो संकल्प हैं, जो हम जिस सोमान में बैठते हैं उस सोमान को नए नए तरीके से हमको अप्लाई करना है, ताकि जीवन में एक नया परिवर्तन, नई उमंग, ऊर्जा, उत्साह बढ़ सके। इसलिए योग में बैठे बैठे भी हमको अपने संकल्पों को तेज करना है या रचनात्मक बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई सोमान लेते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अब केवल इन तीन शब्दों तक ही नहीं ठहर जाना, सीमित हो जाना, बल्कि उसको हमको नए नए तरीके से अपनाना है। जैसे पवित्रता का सागर ऊपर से अवतरित हो गया है और मेरे सिर के ऊपर आके बैठ गया है, मेरे मस्तक से चिपक गया है, या मैं आत्मा भी वहां से बाहर निकलाई और दोनों इन चरम शख्सों से यहीं देख रहा हूं, सामने बिल्कुल देख रहा हूं, और वो पवित्रता का सागर और मैं भी परम पवित्र आत्मा दोनों कंबाइंड यही हो गए हैं। क्योंकि बुद्धि को ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन परम धाम में जाने के बजाय परम धाम को हम नीचे ला सकते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है। तो परम धाम को नीचे ले आओ, ऊपर जाने की जरूरत क्या है। और जब हमारा यहीं से योग चालू हो जाएगा तो ऊपर जाना फिर आसान हो जाएगा। तो हमको योग में भी नए नए तरीके से, जैसे हम यही बैठे हैं तो हम इसी को परम धाम समझ लें, इसी को सूक्ष्म बतन समझ लें, यहीं सब फरिश्ते बैठे हुए हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, एक सोच को नए तरीके से यहीं से नई सोच को चालू कर देना है। और फिर धीरे धीरे हमारा माइंड जो है हमारा जागृत होता जाएगा और हमारा मन एकाग्र होता जाएगा, तो योग में भी नवीनता आएगी। कोई भी हम सुमान लेते हैं, सुदर्शन चक्र है, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, तो सुदर्शन चक्र जो शास्त्रों में दिखाते हैं कैसे गला काटता है, तो मुझे आत्मा से भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक सुदर्शन चक्र निकल रहा है, स्थूल में भी हम इन आंखों से देख सकते हैं, और वो संसार में हमने अनेक देशों में या हर सेंटर में या हर आत्मा के पास वो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया है, और वो सुदर्शन चक्र आत्मा के अंदर घुस गया है और सारे आसुर उसमें मरते जा रहे हैं। इन आंखों से देखना है कि आसुरी वृत्तियां नष्ट हो रही है, उनके निकल रही है आसुरों की, उनकी वृत्तियां आसुरीता के रूप में जैसे एक अलग से उनका स्वरूप निकलता जा रहा है, और एक एक करके वो आसुर मरते जा रहे हैं, वो आत्मा भी जैसे संपूर्ण पवित्र होती जा रही है। तो हमको एक नए तरीके से अगर हम योग का प्रयोग करते हैं तो भी हमारा मन जो है टिका रहेगा, लंबे समय तक हम योग कर सकते हैं, एक ही सोमान पर कितने घंटों बैठ सकते हैं, और जैसे जैसे हम नए नए सोमान में स्थित होते जाएंगे तो आत्मा को रस मिलने लगेगा, और जहां आत्मा को रस मिलता है वहीं खींचती है वो, आकर्षण कहां होता है जहां उसको कुछ मिलता है। तो अगर हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटक रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाहरी आकर्षण में हम फंसे हुए हैं, इसलिए आंतरिक जगत में बैठकर अंतर में बैठकर जो बाबा ने चार पांच दिन पहले कहा था ना, जो ब्रिकटू की कुटिया में बैठे रहते हैं वही अंतर्मुखता के रस का अनुभव कर पाते हैं। तो हमको यहां से बाहर निकलना ही नहीं है, बल्कि अगर निकलना भी है तो जिस तरीके से बाबा ने बताया उसी तरीके से, कि मैं आत्मा इन आंखों से देख तो रही हूं लेकिन बाबा ने देखने के लिए क्या क्या कहा हुआ है। और वास्तव में देखा गया है दुख हमें तभी होता है जब हम यहां से इस वृक्ष की कुटिया को छोड़कर कार्यक्षेत्र में आते हैं। अगर हमें थोड़ी भी स्मृति है, थोड़ा भी उसमें जागृति है, थोड़ी भी याद है, तो हमारी जो अवस्था है वो बेहतर बनी रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बाबा से हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो सोमान से, चाहे वो योग से, चाहे वो ज्ञान से, किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं। इसलिए योग में भी नवीनता लानी है, और इसके लिए मौन चाहिए, संकल्पों का, अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मौन। मुख का मौन तो हम रखते हैं, लेकिन प्राय कई बार देखा भी जाता है कि मौन तो हम रखते हैं लेकिन मौन का असर जो है वास्तव में वो तो हमारा एक परिणाम है, मौन मन हमारा स्वतः हो जाएगा, मन को मौन करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि ट्रस्टियों को डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन था जो गया संडे है, ट्रस्टियों को डायरेक्शन है समर्थ सोच का। अगर हमारी सोच समर्थ है तो स्वतः ही पुरानी दुनिया से हमारा मन मौन होता जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से हमारा मन मौन होता जाएगा, और जहां मौन है वहां एक नए विचारों का आगमन होता है, नए विचार स्वतः बरसने लगते हैं वहां से। तो उसके लिए थोड़ा ना कहीं हम जो वास्तविक मौन है उसको समझने की जरूरत है। बैज लगा लेने से केवल पर्याप्त नहीं है, बोल के बारे में बाबा ने ऊपर था ना चार पांच दिन पहले एक स्लोगन था, अपने बोल की एनर्जी को वेस्ट मत करो। तो बोल की एनर्जी को भले अंदर में तो हम बाहर से बैज लगा ले, लेकिन अंदर में मौन की हलचल है, मौन तो हम है ही नहीं हमारा अंदर से, बाहरी रूप से है। तो मौन को हमको समझना है कि चीज क्या वास्तव में मौन है। तो मौन भी हमें जीवन में व्यर्थ संकल्पों से मौन, या जो पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, उनसे हमको अपने को मुक्त रखने के लिए इस तरह का मौन रखना है। और नेक्स्ट है अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए साहित्य, क्योंकि जब तक साहित्य से हमारा प्रेम नहीं है, मुरली से हमारा प्रेम नहीं है, तो भी हमारी रचनात्मक सोच नहीं बढ़ती है। जैसे मुरली सुन तो लेते हैं, है ना, काली जैसे पूर्वावैन ने प्रश्न उत्तर निकाले थे, तो कल उसने जरूर फील किया होगा कि जितना समय उसने प्रश्न उत्तर निकाले हैं उतना समय वो बहुत सारी चीजों से मुक्त रहेगा, एक नई एनर्जी अंदर में जमा हो गई है और एक अलग से खुशी रही होगी। तो हमको अपने तरीके से मुरली से कुछ ना कुछ, या हम अपने सोमान निकालें, या मुरली में कितने इंग्लिश के अक्षर आ रहे हैं, या मुरली के प्रश्न उत्तर क्या हैं, या मुरली में और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे पहले नहीं पता था, जो आज ही हमने उनको पहले सुनी होंगी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज फिर से नए सिरे से उसको हम ध्यान देकर अपना अप्लाई कर रहे हैं उसको। तो नए नए तरीके से हमको स्वयं ही मुरली में जो नए मेथड क्रिएट करके उनको अपना अप्लाई करने का प्रयास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए स्वयं ही अपने पर फोकस करने की जरूरत है। तो नवीनता, जो साहित्य से हमारा प्रेम, इतना सारा लिटरेचर है, नई नई बुक्स आती हैं, उसमें पढ़ उनको लेकर उनसे अच्छे अच्छे बिंदु स्वयं निकालने, ये नहीं कि किताब में रह देने, अलग से डायरी में लिखें, उसके बाद फिर उनको दोहराने की भी आवश्यकता है। मन बुद्धि रूप, जैसे उस दिन बताया था 16 चीजें और 21, 16 चीजें थी मुरली की, 16 परिवर्तन करने के 16 राज, स्वयं को परिवर्तन करने के 16 राज, और शरीर को बोलने के 21 घटक। तो अगर हम ये बार बार बुद्धि में रिवाइज नहीं करते हैं तो 5-7 दिन के बाद ही ओम शांति हो जाएंगे। वो कौन से थे, किस गढ़ का? हाँ, यहां से पूछो, पहला घटक कौन सा था शरीर को भूलने का? आत्माभिमानी स्थिति। और दूसरा? परमात्म याद। तीसरा? परमात्म प्रेम। चौथा? मनन चिंतन। पांचवा? सेवा, ईश्वरीय सेवा। और छठा? हाँ, कौन कौन से? बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना। 10 हो गए। 11वां? विजुअलाइजेशन। और नेक्स्ट 12वां? डाइवर्ट माइंड, अपने मन के संकल्पों की दिशा को परिवर्तन करना। ये एक बहुत बड़ी कला है, संकल्प व्यर्थ दिखाई दे लेकिन तुरंत उसको समर्थ में परिवर्तन कर देना। तो ये कितना था? 12वां। 13वां? हिप्नोसिस। और 14वां? हाँ, क्रिएटिविटी। 15वां? माइंडफुलनेस, मन हमारा फुल रहना चाहिए समर संकल्पों से। 16वां? त्याग, तपस्या, सेवा और वैराग्य साथ में। सेवा पहले आ गई है, वैराग्य, त्याग, तपस्या और वैराग्य, ये 16वां था। 17वां? आसन, कौन सा आसन? माने जिसमें बैठ गए उसमें बैठ गए, हिलना नहीं चाहिए शरीर, इसका अभ्यास करना है। भले किसी को तकलीफ भी है तो 5 मिनट केवल, ये नहीं सोचना पहले आधे घंटे का संकल्प कर लिया, पहले आधे मिनट का ही कीजिए, आधा मिनट शरीर नहीं हिलना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमारे शरीर की एकाग्रता जरूरी है। आसन। नेक्स्ट ब्रीथिंग, अर्थात अपने श्वासों पर ध्यान देना। नेक्स्ट लिखा ही नहीं आवागे उधर, तो मेरे लिए आ ही नहीं रहा है। हेल्थ, हेल्थ। और नेक्स्ट टचिंग, इस बॉडी को, स्वयं की बॉडी को भी टच नहीं करना संकल्पों से भी। और नेक्स्ट हाँ, ये बॉडी को बार बार ऐसे करते हैं, कई ऐसे मानो बॉडी को हिलाने की आदत होती बहुत। और नेक्स्ट हेल्थ। और लास्ट में प्रकृति, नेचर। तो ये जो 21 घटक हैं, देखो ये इतना देर हम बुद्धि में याद करेंगे तो भी हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, नहीं तो मन को खुला छोड़ते हैं, ठीक है हो गया तो हो गया, अभी ऐसे छोड़ देते हैं उनको। और वो 16 चीजें कौन सी थी? सबसे पहला अटल, अचल, अखंड राज्य अधिकारी। दूसरा टॉप स्टेज। तीसरा कौन सा था जो बताया अभी? ट्रस्टिंग को डायरेक्शन है समर्थ सोचने की। और समर्थ सोच का आधार क्या है? तन, मन, धन, सब तेरा। और चौथा, चौथा ये सच्चा स्नेही। पांचवा मिठास। छठा एडवांस पार्टी, कॉपी खोल के। ये भी ठीक है लेकिन बार बार कॉपी नहीं खोलने की, जब तक पक्का याद नहीं छोड़ने का नहीं। तो अच्छा, 9वां कौन सा था? दीदी की विशेषताएं। तो छठा एडवांस पार्टी। 7वां अष्टरतन, अष्टमाला, नवरत्न, अष्टमाला, नवरत्न। और 8वां था, बताया क्यों नहीं? किसको नहीं बताया, क्या बताया नहीं? वो दीदी जब ऊपर गए थे तो उस समय बोल रहे, बाबा ने पूछा कि नीचे बच्चे पूछ रहे बताया क्यों नहीं, ये तो नहीं मन में संकल्प आता है। और 10वां दादियों का मधु बनाना। 11वां भगवान का ना भगवान का दोष ना भगवती का दोष, दोष तो हमारा जो हम याद नहीं करते हैं। और 11वां डिवाइन यूनिटी। 12वां स्वतंत्र पंछी। 13वां विष्णु चतुर्भुज। 14वां जिम्मेवारी का ताज। 15वां उल्लास से संस्कार मिलन की रास। देखो क्या उसमें, क्योंकि हमको भी 4-5 दिन पहले योग में बैठा सोचा तो 15वां याद नहीं आया हमको भी। वो 9वां है। हाँ जी, तो ये एक मन को, मन की सोच को बढ़ाने का एक तरीका ही। अगर मैं नहीं करते हैं ना, खाली योग योग नहीं सोचना, ये ज्ञान, बाबा के ज्ञान को याद करना भी योगी है। लेकिन हम खाली सोचते हैं इस बॉडी से बिल्कुल दूर चले जाए, ये बॉडी बिल्कुल याद नहीं आए, कोई पॉइंट ही ना याद आए, ऐसा नहीं है। ये शरीर भूलना है, ज्ञान का चिंतन करने से शरीर भूलेगा। तो कौन सा घटक चल रहा था लास्ट में? क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये चिंतन, माना मन को खाली नहीं रखना है, योग में बैठे मन को खाली रखा। फिर नेक्स्ट है हमारा, वो हो गया। नेक्स्ट है दृष्टिकोण। हमारा जो दृष्टिकोण है एक बेहद का दृष्टिकोण होना चाहिए, चौतरफा दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर हम किसी भी बात को एक ही तरफ से देखते हैं तो हमारी सोच ज्यादा नहीं चलती है। जैसे यहां से हम शांति स्तंभ पर जाते हैं, अगर शांति स्तंभ के चार हिस्से हैं, माना चार साइड हैं, अगर हम सामने खड़े होते हैं तो एक ही साइड दिखाई देगी ना, और तीन उस तरफ क्या लिखा है नहीं पता चलेगा, चारों तरफ घूमना पड़ेगा, चारों तरफ दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी। इसी तरह कोई भी घटना होती है तो उसको हमको उसको हर तरीके से देखना है। अगर हम उसको पहले नेगेटिव तो उसमें पॉजिटिव कुछ हो सकता है। जैसे कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में कितनी सोच चलती है, वहां हमारी कैसे मन बुद्धि कितनी ज्यादा सोचने लग जाती है। उसी घटना को जब पत्रकार देखता तो किस तरीके से देखता है, वो दोष देखता है पहले, ये सड़क ठीक तो नहीं, ठीक नहीं बनाई है। अच्छा ड्राइवर देखा हो तो किस तरीके से देखेगा, ये ड्राइवर ने पी होगी या तो वो ठीक से नहीं चला रहा होगा। अच्छा भाई वकील देखेगा, क्या देखेगा, वो अपना देखेगा अब ये केस करेगा तो मेरी कितनी कमाई होगी। और डॉक्टर देखेगा तो उस घटना को, तो डॉक्टर फटाफट उसको ठीक करने का सोचेगा, इंश्योरेंस वाला आएगा फटाफट क्लेम करेगा। तो कोई भी घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो वहां हमारा दृष्टिकोण है सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चौतरफा दृष्टिकोण होना चाहिए, बहुयामी दृष्टिकोण, बेहद का दृष्टिकोण। हर बात को हम नए नए तरीके से देखें, उसका सामाजिक लाभ क्या है, उसका आर्थिक लाभ क्या है, उसका राजनीतिक लाभ क्या है, उसका आध्यात्मिक लाभ क्या है, हर तरीके से हर बात को उसको हम देखें तो ही हमारी जो सोच है बढ़ती जाएगी। हम सभी ब्राह्मण इस बात के अनुभवी होंगे कि जब हमने इस ब्राह्मण संसार में कदम रखा, बाबा से हम जुड़े, उस समय की सोच और अब की सोच में सभी में फर्क तो पड़ा होगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते तो हमें सोच भी कुछ और बढ़ानी पड़ेगी, केवल वहां तक किसी में तो रुक नहीं जाना है कि अभी हमने बहुत कुछ सीख लिया। एक संकल्प हमको ये हमेशा रहना चाहिए कि हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। जब तक ये संकल्प हमारी बुद्धि में रहेगा तब तक हम सीखते रहेंगे, और जैसे आगे के बहुत कुछ हो गया, अभी तो बीके बन गए, समर्पित भी हो गया, सेंटर में भी रहना शुरू कर दिया या घर में भी रह रहे हैं, तो लंबे समय से तो हम तो बहुत अनुभवी हो गए हैं, बहुतों को अच्छा कोर्स भी करा रहे हैं, ज्ञान भी सुना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बाबा ने परसों ही कहा था ना, जब तक जीना है नहीं, दूसरा शब्द था अंत तक तुमको ये पढ़ाई और योग सीखना है। तो ये जो हमारा जो ब्राह्मण जीवन है इसमें कुछ नवीनता चाहिए, इसलिए हमको रुक नहीं जाना है। हमेशा हमारी मन बुद्धि में एक तो विचार जरूर रहना चाहिए कि आज से हमारा ये नया जीवन चालू रहा है, पुरुषार्थ में नवीनता तभी हम कर पाएंगे। तो ये था कि हर चीज को नए तरीके से देखना, नया दृष्टिकोण। और जीवन में कोई भी हमको बात शुरू करनी है, कोई भी अच्छा संकल्प आता है तो उसका तुरंत श्री गणेश करना चाहिए, अर्थात तो उस बात को तुरंत लागू कर देना चाहिए। हमने कई बार देखा, कई बार बहुत अच्छा संकल्प आता है तो अगर हम उस संकल्प को नोट नहीं करते तो बाद में भूल जाता है। उस संकल्प के ऊपर हमको कोई अच्छा चिंतन करने का विचार आया कि हम यहां से उठ के जाएंगे, आज मुरली में बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले शाम के योग में बैठा था तो कुछ कोई फोन आया तो मैं काम से बाहर आ गया, फिर बहुत खींच रहा था तो योग में जा रहा था वापस, तो कोई रास्ते में मिल गया तो बोला चलो चक्कर मार के आते नक्की लेक, तो हम चले गए नक्की लेक चक्कर मारने। तो देखा जो खुशी हमको योग में लेनी चाहिए, चिंतन तो किया, भांग कंट्रोल तो रखा अपने मन को, लेकिन हम उसमें बह गए। तो जो हमको श्रेष्ठ संकल्प आता है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुरंत श्री गणेश अर्थात तुरंत उसको आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमको पता नहीं बाबा हमको कौन कौन सी प्रेरणा दे रहा है, कौन सी समस्या जो ऐसी जटिल समस्या है, विकटतम समस्या है जिसका समाधान हो जाए, पता नहीं कौन सा ऐसा वरदान हमारे जीवन में उस समय आ जाए, कौन सी ऐसी बात हमारी बुद्धि में टच हो जाए जो सारी समस्याएं बिल्कुल हल हो जाए, जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें। इसलिए जो भी हमको संकल्प अच्छा संकल्प आता है अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी उन्नति के प्रति, तो उसको हमको तुरंत अप्लाई करना है, अर्थात तुरंत उसका शुभारंभ कर देना है। कोई उसमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, स्वयं से कोई समझौता नहीं करना है। फिर दूसरा है परिस्थितियां, परिस्थिति भी हमको सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच सोचने पर विवश कर देती हैं। जब हमारे जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आती है तो कैसे हम सोचते हैं, तो परिस्थितियों के समय भी हमको कोई सहारा ढूंढने का हमको प्रयास नहीं करना है, नहीं तो अधिकतर हम ही सोचते हैं, दूसरे को ढूंढते हैं, अगर ये समस्या आई तो कैसे हमारा हल निकले, हम खुद ही उसका हल निकालें। आज तक हमको बाबा ने क्या नहीं कहा, हमने जिंदगी में कभी से कुछ पूछा नहीं है इस समस्या के लिए, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के लिए किसी को पूछने की जरूरत क्या है, सारा बाबा ने उसमें बताया हुआ है। इतनी क्लासेज हैं, सुनो अनेक वरिष्ठ भाई बहनों को क्लासेज हैं, अव्यक्त मूल्यों का इतना बड़ा खजाना है, साकार मूल्य हैं, चिंतन करने के लिए अनेक प्रकार के हमको टॉपिक मिलते हैं। तो ये हमारे सब चीजें जो अगर इनको अप्लाई करते हैं जीवन में तो हम अनेक प्रकार की परिस्थितियों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं, और परिस्थितियां तब आती है जब हम उनको आने देते हैं। जब हम इस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, इस चीज में लिप्त रहेंगे तो परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उनको किनारा करने के लिए हमारे पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य स्वतः ही हमारे अंदर जमा होता जाएगा, तो किसी से कोई हमको सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर अगर यदि बीमार हो जाए तो डॉक्टर दूसरे को थोड़ा पूछेगा, उसको पता सारा इस चीज का। तो हम भी एक स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर हैं, आत्मा के डॉक्टर हैं। तो जो समस्या आ रही है आ रहा, डॉक्टर को अपना ऑपरेशन करना तो वो खुद नहीं, दूसरे का सहारा लेना पड़ता, वो अलग बात है, लेकिन यह तो सूक्ष्म में सारा है। तो वो बाबा सुप्रीम सर्जन है, वो स्वतः हमारा ऑपरेशन कर देगा, वो हमें रोज इंजेक्शन लगाता रहेगा, सोमान का, मन मनवा का इंजेक्शन। और अपने टैलेंट को बढ़ाना है, नेक्स्ट है एक अपने टैलेंट, जो भी हमारे में विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको हमको दबाना नहीं है बल्कि उनको बढ़ाना है, और दूसरे की भी विशेषताओं को देखते उनको उनसे सीखना है, चाहे हमारे से कितना भी छोटा कोई नहीं क्यों हो। यह हमारे पुरुषार्थ में बाधक है अगर हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, वो किसी को दबा नहीं रहे बल्कि हम स्वयं को दबा रहे हैं। अगर हम दूसरे को आगे बढ़ाए तो वो दूसरों को आगे नहीं, पहले हम स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं वास्तव में। तो सीखने की कला जो है, सीखने की झलक है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो भी हमारी सोच जो है रचनात्मक क्रिएटिव माइंड होता है, बुद्धि जब विशाल होती जाएगी तो स्वतः ही हमारी सोच पॉजिटिव होती जाएगी, क्रिएटिव सोच होती जाएगी। और एक है प्रकृति का सानिध्य, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन घर में छत तो होती है ना, छत पर जा सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा निकाल के प्रकृति की गोद में। छत नहीं भी है तो बिजनेस, दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर में कोई छत के नीचे तो नहीं जाते हैं, रोड पर तो जाते हैं ना, वहां पे तो बाजार खुला ही होता है, सड़क किनारे थोड़ा बैठ गए, थोड़ा देखो सभी को साक्षी होकर कैसे जा रहे हैं ये, उनके बारे में चिंतन करो, है ना, इनका इनकी मन बुद्धि में कैसी भागम दौड़ लगी पड़ी है, बेचारों को भगवान के ज्ञान का पता ही नहीं है इनको। दूसरे की छत पर चढ़ जाओ, दोस्त बना लो किसी को, उसके बगीचे में चले जाओ, ये है क्रिएटिव सोच, तो उसको भी कुछ सुनाओ, तो ये ढूंढने का। तो क्योंकि प्रकृति में हम देखा है वहां जाने से मन खुल जाता है, मन ओपन हो जाता है, जैसे नहीं तो बंद बंद रहता। इस बात से सब अनुभव होंगे कि जिस जो भी हम सेवाएं करते हैं, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे कहीं भी है, आप उस स्थान से थोड़ा बाहर हट जाओ तो मन को कितना हल्का सुकून मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है, क्योंकि जिस स्थान पर हम बैठे हैं कहीं ना कहीं उस स्थान पर हमारा लगाव है, और जितनी वहां चीजें रखी है मन हमारा उन चीजों से बंधा हुआ है, जैसे हम वहां से निकलते हैं तो मन थोड़ा खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, और प्रकृति के गोद में जाने के बाद तो और ही मन खुलता है। इसलिए प्रकृति तो सब जगह वैसे मौजूद होती है, ऐसे नहीं है, माना एकांत में प्रकृति में थोड़ा अपनी सोच को और बढ़ाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। स्कूल में क्या होता है, जब टिफिन लंच होता है तो टिफिन लेके निकलते हैं, टिफिन नहीं होता लंच होता है, तो टिफिन लेके निकलते हैं वो, हाँ वो बच्चों को देखते जैसे बांध के रखा होता है उनको, है ना। तो ये सब चीजें थी, तो कौन कौन सी हमने इसके कितने घटक थे, एक तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प, और संकल्प को शक्तिशाली बनाना है, संकल्प केवल वो बीज तक ही नहीं रहे, उस बीज को एक फलीभूत करने के लिए, उसका बड़ा वृक्ष बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसको जल और धूप, पर्याप्त खाद, उसको सब देना है संकल्प को। दूसरा है जी ज्ञान का मनन चिंतन हो गया, फिर तीसरा योग के नए नए तरीके, और चौथा है फिर हम जो नई एक्टिविटी करते हैं, पांचवा है जी क्रिएटिविटी हो गया, फिर नेक्स्ट है दृष्टिकोण हमारा जो है चौतरफा होना चाहिए, बेहद का दृष्टिकोण होना चाहिए, हाँ जी अमृत वाला वो योग में आ गया, फिर तुरंत कोई भी कार्य करना तुरंत शुरू कर देना उसको, फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, स्वयं के ऊपर निर्भर करना, स्वयं को स्वयं के ऊपर निर्भर रखना है, दूसरों के ऊपर नहीं। फिर नेक्स्ट है परिस्थितियां, परिस्थितियों से भी कुछ सीखना है। और नेक्स्ट साहित्य, साहित्य से हम जितना जुड़ा रहेंगे उतना हमारी सोच बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और विचारों को परिवर्तन करने की कला, नकारात्मक से बाबा हमको जो बताते हैं कोई भी स्थूल चीज को कैसे सूक्ष्म से जोड़ देते हैं, तुम भ्रमरियां हो, और भ्रमरी तो बेचारी वो होती है, वो गंध में बैठी होती है, तो उस चीज से बाबा ने कैसे सीखा, गुलाब के फूल हो वो कहाँ खाद में रहता है, खुशबू देता है। तो हर चीज को हमको जोड़ना है इस आध्यात्मिकता से, ताकि हमारा चिंतन और आगे बढ़ सके। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करने की कला, साहित्य हो गया, परिस्थितियां होगी, प्रकृति के, हाँ जी, प्रकृति के टच में रहने का, और ऐसे बहुत सारे शिफ्ट हैं, स्वयं एनजी अटेंशन, जैसे कि टैलेंट, स्वयं के टैलेंट अर्थात विशेषताओं को बढ़ाना और दूसरों के से भी सीखना है गुण ग्राहकता करनी, हाँ जी, हेल्दी बॉडी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। हाँ खान पान, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन बताया था ना कि दूसरे की थाली में नजर तुरंत चली जाती है तो कैसे खाने का है, शॉल ओढ़ के उसको देखा ही ना क्या खा रहे है वो उठा उठा के देखे क्या कह रहा है, जैसे को उठाएगा ना थाली पीछे कर लो फिर जैसे एक बार हंसी की बात है, तो एक भाई ने रोटी बनाई, दो रोटी, तो उसमें देसी घी लगाया था और बीच में थोड़ा नमक को डाल दिया, तो डाइनिंग पर हम भोजन कर रहे थे, तो उधर से रहता हूँ दादी आ गई, तो दादी आ गई तो दादी देखेगी तो तुमने खुद बनाया, तो वो थाली में रखे थे, तो दादी आ गई तुरंत, तो जो थाली तो ना वो भाई ने ऐसे टांगे नीचे करके ऐसे दबा दी नीचे, और वो सूखी रोटी खा रहे थे, तो दादी उधर से आई, तो दादी ने बोला तुम रोटी सूखी, हाँ दादी सूखी, सूखी भी खा लेते, हाँ सूखी रोटी खा लेता, ये नहीं पता बीच में देसी घी लगा हुआ है तो खान पान की जो है ना ये हमारी बहुत, हमें स्वयं को ही पता है हमको कितना लेना है, जितना पेट को जरूरत है उतना हमको लें तो भी हम हेल्दी वेल्दी, तो भी हमारी सोच नहीं, तो वो जो भोजन है ना वो हमारी सोच को खींच लेता है, वो मन बुद्धि उसी सोच उसी में डूबा रहेगा, क्या खाया क्या नहीं खाया, अभी शाम को क्या है, सवेरे क्या है, दोपहर को क्या है, उसमें चलता रहता है, मिले तो ठीक नहीं मिले तो भी ठीक। अगर हमको इच्छा है तो बाबा अपने आप इच्छा, कहीं ना कहीं से सब्जी आ जाएगी अपने आप ही, जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, इसलिए भोजन भी जरूरी है। और कुछ, और किसी को आ रहा कोई नया घटक, दूसरों को आगे बढ़ाना एक भी नया घटक था, और घटक माना इसको घटकना है, पोले की बूंदे घटकते हैं ना हर संडे को, हर संडे को नहीं किसी किसी संडे को, जो गवर्नमेंट की योजना होती है बच्चों को पोलियो से मुक्त करने के लिए, संडे को ये चलाते हैं अभियान। और कुछ कोई याद आ रहा है, और जो अलग अलग तरीके से मुरलियों का मनन चिंतन बताया, प्रश्न उत्तर निकालने या कुछ भी अपने तरीके से, ये नहीं कि किसी को होमवर्क मिला तो वो ही करेगा, अगर किसी को मिलता है उसको खुद करके, भले दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने से और ही हमारा कम हो जाता है, जो हम खुद करके अपने अंदर ही रखते हैं तो स्वतः हमारे लक्षणों से स्वतः दिखाई देता है। ओम शांति।